नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। टाइडी फर्स्ट, अ पर्सनल एक्सरसाइज इन एम्पिरिकल सॉफ्टवेयर डिजाइन, केन बेक की सॉफ्टवेयर विकास पर केंद्रित संक्षिप्त व्यावहारिक पुस्तक है।
इसका केंद्रीय प्रश्न सरल दिखता है, लेकिन रोजमर्रा के प्रोग्रामिंग निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है।
किसी नई सुविधा या सुधार को लागू करने से पहले कोड को साफ किया जाए या नहीं, बेक इस प्रश्न का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं देते।
इसके बजाय वे छोटे संरचनात्मक बदलावों, जिन्हें वे टाइडिंग्स कहते हैं, के माध्यम से निर्णय लेने की पद्धति समझाते हैं।
ये बदलाव कोड के व्यवहार को बदले बिना उसे पढ़ने, समझने और बदलने में आसान बनाते हैं। पुस्तक का स्वर निर्देशात्मक होने के साथ प्रयोगधर्मी भी है।
पहले भाग में छोटी टाइडिंग तकनीकें हैं, दूसरे में उन्हें अलग बदलावों के साथ संभालने और सही समय चुनने की चर्चा है, तथा तीसरे में कपलिंग, कोहिजन,
विकल्प और समय के आर्थिक मूल्य जैसे सिद्धांत हैं।
इस तरह पुस्तक कोड सफाई को केवल शैली का प्रश्न नहीं, बल्कि परिवर्तन की लागत और टीम की समझ का व्यावहारिक प्रश्न मानती है।
मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, टाइडिंग्स, व्यवहार बदले बिना कोड की संरचना सुधारने की छोटी चालें, बेक टाइडिंग को ऐसे छोटे,
सुरक्षित और सामान्यतः आसानी से पलटे जा सकने वाले संरचनात्मक बदलाव के रूप में रखते हैं, जो अगला काम सरल करे। इसका लक्ष्य नई क्षमता जोड़ना, दोष ठीक करना या आउटपुट बदलना नहीं है। लक्ष्य है उस कोड को अधिक स्पष्ट बनाना जिसमें व्यवहारगत बदलाव किया जाना है। उदाहरण के रूप में, लंबे हिस्से को अर्थपूर्ण सहायक विधि में निकालना, संबंधित कथनों को पास लाना, मृत कोड हटाना, गार्ड क्लॉज लगाना या किसी जटिल अभिव्यक्ति को नाम वाले मध्यवर्ती चर में बांटना शामिल हो सकता है। इन कदमों की उपयोगिता उनके छोटे आकार में है। छोटा बदलाव समीक्षा, परीक्षण और गलती की स्थिति में वापसी को आसान करता है। पुस्तक इन्हें भारी, दूरगामी पुनर्रचना के विकल्प के रूप में नहीं बेचती।
अंतर यह है कि पारंपरिक रिफैक्टरिंग की चर्चा अक्सर डिजाइन को व्यापक रूप से बेहतर बनाने के आदर्श से शुरू होती है, जबकि टाइडिंग निकटतम आवश्यक बदलाव की बाधा हटाने से शुरू होती है।
यदि किसी शर्त को समझे बिना नई सुविधा जोड़ना जोखिमपूर्ण है, तो पहले उस शर्त को स्पष्ट नाम देना उपयोगी हो सकता है।
लेकिन यदि सफाई अगले बदलाव को आसान नहीं करती, तो वह तत्काल आवश्यक नहीं है। यह सीमा टाइडिंग को सजावटी कोड सफाई बनने से रोकती है।
दूसरा, संरचनात्मक और व्यवहारगत बदलावों को अलग रखने का अनुशासन। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक सिद्धांत संरचना और व्यवहार के बदलावों को अलग पहचानना है। संरचनात्मक बदलाव में प्रोग्राम का बाहरी परिणाम वही रहता है, पर कोड की व्यवस्था अधिक समझने योग्य होती है।
व्यवहारगत बदलाव में प्रोग्राम वास्तव में कुछ नया करता है या किसी मौजूदा परिणाम को बदलता है।
दोनों को एक ही परिवर्तन में मिला देने पर समीक्षा करने वाले व्यक्ति के लिए यह देखना कठिन हो जाता है कि कौन सा अंतर जानबूझकर है और कौन सा अनचाहा प्रभाव।
अलग रखने पर परीक्षण की भूमिका भी साफ होती है। संरचनात्मक बदलाव के बाद मौजूदा परीक्षणों को वही व्यवहार पुष्टि करना चाहिए, फिर व्यवहारगत बदलाव के लिए नए या बदले हुए परीक्षण अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करते हैं।
इसका अर्थ यह नहीं कि हर स्थिति में दो अलग कमिट या लंबे औपचारिक चरण अनिवार्य हैं। बेक का आग्रह संदर्भ के अनुसार छोटे और समझने योग्य कदम चुनने पर है।
कभी पहले टाइडिंग करना परिवर्तन को सुरक्षित बनाता है, क्योंकि कोड के भीतर की जिम्मेदारियां स्पष्ट हो जाती हैं। कभी पहले व्यवहार बदलना बेहतर है, विशेषकर जब समस्या तात्कालिक हो या अपेक्षित डिजाइन अभी स्पष्ट न हो। यह भेद टीम संवाद में भी सहायक है। सहकर्मी बता सकते हैं कि वे कोड के अर्थ को समझने के लिए बदलाव देख रहे हैं या उत्पाद के व्यवहार को जांचने के लिए।
परिणामतः चर्चा निजी पसंद से हटकर जोखिम, प्रमाण और उद्देश्य पर केंद्रित होती है।
तीसरा, टाइडिंग पहले, बाद में या बिल्कुल नहीं, समय का निर्णय संदर्भ से तय होता है, शीर्षक में प्रश्न चिन्ह पुस्तक की मुख्य बौद्धिक स्थिति बताता है।
टाइड फर्स्ट कोई आदेश नहीं है कि हर बदलाव से पहले सफाई की जाए। बेक यह विचार करते हैं कि टाइडिंग पहले कब लाभ देगी, बाद में कब उचित होगी और कब उसे छोड़ देना चाहिए। पहले टाइडिंग तब उपयोगी है जब वर्तमान संरचना अपेक्षित व्यवहारगत बदलाव को समझना या सुरक्षित ढंग से लागू करना कठिन बना रही हो।
उदाहरणतः, यदि एक विधि में कई अलग निर्णय एक साथ जुड़े हों, तो उनमें से संबंधित भाग अलग करने से नई शर्त जोड़ने का जोखिम घट सकता है। बाद में टाइडिंग तब समझदारी हो सकती है जब काम की दिशा अभी अनिश्चित हो।
पहले ही सामान्यकृत डिजाइन बना देना उस समस्या के लिए तैयारी हो सकती है जो आती ही नहीं।
बिल्कुल, टाइड करना भी उचित विकल्प है जब लाभ छोटा, परिवर्तन दुर्लभ या समय और जोखिम की लागत अनुपातहीन हो।
पुस्तक उस आकर्षण को भी पहचानती है जिसमें एक छोटी सफाई लगातार अगली सफाई को जन्म देती है। इसलिए टाइडिंग प्रगति का विकल्प नहीं बननी चाहिए, वास्तविक लक्ष्य अभी आवश्यक व्यवहारगत परिवर्तन है। यह दृष्टि डेवलपर को दो विपरीत आदतों से बचाती है, हर बार गंदे कोड में जल्दबाजी से बदलाव करना और हर कार्य को व्यापक सफाई परियोजना में बदल देना। अच्छा निर्णय। उस विशेष बदलाव, उपलब्ध परीक्षणों, कोड की समझ और भविष्य में बदलाव की संभावना पर निर्भर करता है। चौथा, कपलिंग और कोहिजन से समझना कि बदलाव महंगा क्यों बनता है। पुस्तक का सैद्धांतिक भाग कोड सफाई की चर्चा को डिजाइन के मूल गुणों तक ले जाता है। कपलिंग का आशय उन निर्भरताओं से है जिनके कारण एक हिस्से को बदलने पर दूसरे हिस्सों को समझना, जांचना या बदलना पड़ता है। कोहिजन यह देखने का तरीका है कि किसी एक भाग के भीतर रखी जिम्मेदारियां वास्तव में कितनी निकटता से संबंधित हैं। जब असंबंधित जिम्मेदारियां एक ही जगह उलझी हों या एक छोटा नियम कई दूरस्थ स्थानों में फैला हो, तब साधारण बदलाव भी महंगा और जोखिमपूर्ण बन सकता है। टाइडिंग्स इन समस्याओं को हमेशा समाप्त नहीं करती, किंतु वे स्थानीय स्तर पर निर्भरता और अस्पष्टता घटा सकती है। किसी नामहीन तर्क को स्पष्ट नाम देना पाठक को उसके उद्देश्य तक तेजी से पहुंचाता है। संबंधित कोड को साथ रखना संशोधन के लिए आवश्यक मानसिक खोज कम कर सकता है। यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोड की बड़ी लागत उसे लिखना नहीं बल्कि भविष्य में पढ़ना और समझना होती है। बेग का दृष्टिकोण केवल सुंदर दिखने वाले कोड की वकालत नहीं करता, वह पूछता है कि क्या संरचना उस व्यक्ति की संज्ञानात्मक मेहनत कम करती है जो अगला बदलाव करेगा। फिर भी वे यह संकेत नहीं देते कि कपलिंग या कोहिजन के लिए कोई एक स्थिर माप पर्याप्त है। उनका मूल्य संदर्भ में है, उस विशेष परिवर्तन को सरल और विश्वसनीय बनाने में। अंत में विकल्प और समय के आर्थिक मूल्य से डिजाइन निवेश का आकलन। टाइडी फर्स्ट की विशिष्टता यह है कि वो सॉफ्टवेयर डिजाइन को आर्थिक निर्णय के रूप में भी देखती है। हर सफाई का तत्काल खर्च होता है, समय, ध्यान, समीक्षा, परीक्षण और कभी कभी अनपेक्षित जोखिम। बदले में वो भविष्य में तेज, सरल या सुरक्षित बदलाव की संभावना दे सकती है। बेक इस संभावना को विकल्प के विचार से जोड़ते हैं। अच्छा, डिजाइन अक्सर भविष्य के लिए अधिक रास्ते खुला रखता है, पर हर संभावित रास्ते के लिए आज ही कीमत चुकाना बुद्धिमानी नहीं है। यदि किसी हिस्से में जल्द बदलाव आने की प्रबल संभावना है तो उसे अधिक स्पष्ट और लचीला बनाना उचित निवेश हो सकता है। यदि बदलाव की संभावना कम है तो वही निवेश व्यर्थ जटिलता बढ़ा सकता है। समय के आर्थिक मूल्य का विचार भी इसी संतुलन को मजबूत करता है। आज की निश्चित लागत और भविष्य के अनिश्चित लाभ समान नहीं होते, इसलिए डिजाइन सुधार को केवल नैतिक कर्तव्य या व्यक्तिगत रुचि की तरह नहीं देखना चाहिए। उसे अपेक्षित लाभ, उपलब्ध जानकारी और परिवर्तन की निकटता के आधार पर तौला जाना चाहिए। यह दृष्टि डेवलपर को उत्पाद और व्यवसाय के संदर्भ से जोड़ती है। फिर भी पुस्तक किसी गणितीय सूत्र से हर निर्णय निकालने का दावा नहीं करती। आर्थिक भाषा का काम सोच को अनुशासित करना है, ताकि न तो अल्पकालिक जल्दबाजी हावी हो और न ही काल्पनिक भविष्य के लिए अत्यधिक निर्माण। निष्कर्ष में, टाइडी फर्स्ट उन डेवलपर्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो मौजूदा कोडबेस में सुरक्षित बदलाव करना सीख रहे हैं, और उन अनुभवी इंजीनियरों के लिए भी जो डिजाइन चर्चा को अधिक स्पष्ट भाषा देना चाहते हैं। नए प्रोग्रामर को इससे छोटे लागू किए जा सकने वाले संरचनात्मक सुधारों की सूची और उनका उद्देश्य मिलता है। अनुभवी पाठक को अधिक मूल्य इस बात में मिल सकता है कि सफाई कब करनी है, कब रोकनी है और उस निर्णय को जोखिम तथा लागत के आधार पर कैसे समझाना है। यह पुस्तक टेस्टिंग, रिफैक्टरिंग या आर्किटेक्चर पर विस्तृत तकनीकी संदर्भ पुस्तक नहीं है। इसकी सीमा ही इसकी उपयोगिता है। यह डिजाइन समस्या के लिए भारी प्रक्रिया नहीं देती, इसके बजाय यह रोज के छोटे निर्णयों पर ध्यान देती है जहां कोड की पठनीयता, परिवर्तन की तात्कालिकता और भविष्य की अनिश्चितता एक साथ काम करती हैं। समान श्रेणी की कई पुस्तकों में साफ कोड के नियम या आदर्श डिजाइन प्रमुख होते हैं। केंट बेक का अलग योगदान नियमों के बजाय निर्णय की परिस्थितियों पर जोर है। संरचनात्मक और व्यवहारगत बदलाव अलग रखने, टाइडिंग के आकर्षण को नियंत्रित करने तथा कपलिंग, कोहिजन और आर्थिक विकल्पों को जोड़ने से पुस्तक व्यावहारिक बनती है, जो पाठक कोड को केवल तकनीकी वस्तु नहीं बल्कि भविष्य के सहयोग और परिवर्तन की लागत मानकर देखना चाहते हैं, उन्हें यह संक्षिप्त पुस्तक उपयोगी दृष्टि देगी। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं केंट बेक, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।